मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 20 जनवरी 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए दाखिले लिए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सोहन कुमार, आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, चंद्रकांत देवांगन, आप चांपा छत्तीसगढ़ से हैं, सुदीप धुर्वे, आप होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हैं और अनुराधा, आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। सोहन, चंद्रकांत, सुदीप और अनुराधा, आप चारों नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके बाद फ्राइडे का दिन है, कुछ सूचनाएं होती हैं, लेकिन एक सूचना रूटीन के फ्राइडे से थोड़ी सी हटकर है और यह वह सूचना है जो पहले भी दी जा चुकी है। कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे रिक्वेस्ट आए हैं तो मैं फिर से सूचना दे रहा हूं और ये सूचना ये है मित्रों कि जो स्टूडेंट अभी फरवरी मार्च की क्लासेस के लिए आ रहे हैं उनके लिए एडमिशन फॉर्म नेट पर डाल दिया गया है। आप जब जैसे .com पर जाएंगे आपको ऊपर वो फॉर्म मिलेगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज उस फॉर्म को जल्दी से जल्दी तुरंत भरकर भेज दें। तो मित्रों यह एक सूचना है जिसे मुझे विश्वास है कि आप सब पूरी गंभीरता से लेंगे। दोस्तों अब जो दूसरी खबरें हैं वो सामान्य खबरें हैं, जैसे कि कल चूंकि शनिवार और उसके बाद रविवार है तो दो दिनों की ये गेस्ट छुट्टियां होती हैं तो इसमें डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आएगा और इस तरह से लाइफ मैनेजमेंट भी नहीं आता है, लेकिन आपके लिए दूसरी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं जैसे प्रेस क्लिपिंग्स कल भी अवेलेबल आपको होंगी, जो भी अखबारों की कतरनें इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको पढ़ने को मिलेंगी और उसके साथ ही साथ आपको योजना और कुरुक्षेत्र के टोटल चार आर्टिकल दो योजना से और दो कुरुक्षेत्र से पढ़ने को मिलेंगे, दो उसमें से हिंदी के होंगे दो इंग्लिश के होंगे, ये आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही आपको एक वीकली क्वेश्चन मिलेगा, साप्ताहिक प्रश्न जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है और इसके बारे में कई बार मैं बातें कर चुका हूं। और दोस्तों आखिरी में यह सूचना कि स्पेशल ऑडियो गाइडेंस जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनके पास भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ सूचनाएं थी, अब हम आते हैं अपने रूटीन पर और शुरुआत करते हैं न्यूज एनालिसिस से। मित्रों ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज आपने सुनी होगी और कल के न्यूज में सिविल सर्विस की तैयारी की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ कंटेंट के फॉर्मेट में भी हैं और कुछ सच पूछे तो टॉपिक के फॉर्मेट में भी हैं। कंटेंट के फॉर्मेट में जैसे बताऊं, उड़ान योजना के बारे में आपने न्यूज सुनी कि उम्मीद है कि उड़ान योजना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, एक महीने के अंदर ही शायद वो योजना शुरू हो जाएगी। आपको मालूम है कि मुझे लगता है कि लगभग चार पांच महीने तो हो गए जब केंद्र सरकार ने उड़ान योजना की घोषणा की थी और इसका जो पर्पज है वो खासकर जो हमारे नगर हैं ज्यादा से ज्यादा नगरों को एयर ट्रैफिक से जोड़ना, मतलब वायु यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराना। दोस्तों ये इसलिए क्योंकि मैंने उस समय आप लोगों को बताया था, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जो वायु यातायात है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो कहीं बाई रोड ट्रेवल करके जाएंगे या ट्रेन से ट्रेवल करके जाएंगे। अगर एयर से ट्रेवल करने की सुविधा नहीं होती है तो फिर वो उस स्थान को चुनते नहीं है अपने लिए उद्योग लगाने के लिए या ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए या विजिट करने के लिए, और ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी होता है और ये पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी होता है, क्योंकि देखिए उनके पास वाकई में काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है, वक्त बहुत कम होता है। तो इस रूप में ये आर्थिक विकास का बहुत बड़ा इंजन होता है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसे आप केवल एक यात्री की सुविधा मत माने, है ना, ये आर्थिक विकास का बहुत बड़ा आधार होता है। तो उड़ान योजना आपको मालूम होनी चाहिए कि किससे रिलेटेड है। दूसरी जो खबर थी दोस्तों वो बजट को लेकर के था कि अभी चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से जानकारी चाही है कि सन 2012 में जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था तो थोड़ा डिले किया था, उसको टाइम पर पेश नहीं किया था। और उसका रीजन ये था कि 2012 में उसी समय कुछ स्टेट में चुनाव होने थे, बिल्कुल वही सिचुएशन अभी भी है। तो उस समय के लिए उन्होंने जानकारी चाहिए कि किन किन आधारों पर किस तरीके से उन्होंने बजट को डिले कर दिया था। आपको मालूम है कि 1 फरवरी को अब बजट आना है और दूसरी तरफ 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो गए हैं, वो लंबे चलेंगे। उसकी जो आखिरी वोटिंग है फरवरी से शुरू होकर के और शायद 5 मार्च या इसके आसपास तक मतदान होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये अप्रिहेंशन है कि सरकार अपने केंद्रीय बजट में इस तरह की घोषणा कर सकती है जो मतदाताओं को रिझाने वाले हों, आकर्षित करने वाली हों और उसका प्रभाव 5 राज्यों के चुनावी मतदान पर हो। तो इन्होंने डिमांड की है चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे याचिका, सुप्रीम आपने अखबारों में पढ़ा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वो याचिका टर्न डाउन कर दी कि कोई ऐसा नियम नहीं है कि बजट केवल इसलिए डिले कर दिया जाए क्योंकि चुनाव होने हैं। अब इस बारे में अब चुनाव आयोग देखिए क्या निर्णय लेता है। तो उसने केंद्र सरकार से जवाब, कुछ जानकारियां चाहिए हैं, अब देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आचार संहिता तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है चुनाव के दौरान। और चूंकि 2012 में इस तरह का एक हो चुका है, इस तरह की घटना घट चुकी है, तो अब देखते हैं कि क्या स्थिति होती है। तो आपकी नजर इस घटना पर होनी चाहिए। मित्रों, जो दूसरे दो बहुत जो इंपॉर्टेंट मैंने कहा कि और टॉपिक हैं, ये दो तो कंटेंट हो गए, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कल के न्यूज में थे। उसमें एक तो जल्लीकट्टू को लेकर है दोस्तों, और दूसरे सीबीआई निदेशक के अपॉइंटमेंट को लेकर। इस पर मैं अब थोड़ी थोड़ी आपसे बात करूंगा और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, अब हम पहले आते हैं जल्लीकट्टू को लेकर। देखिए, ये काफी समय से चल रहा है, एक तमिलनाडु का एक बुल फाइटिंग तरह का गेम है, जो सांडों के सांड युद्ध से संबंधित खेल है। और दोस्तों, ये कहा जाता है कि ये जो स्पेन है ना, वहां से ये आया होगा। स्पेनिश, स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो सांडों का युद्ध है। और स्पेन के एक बहुत प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं पिकासो, उन्होंने बल्कि एक अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब मैं खाली कैनवास को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उसमें से सांड निकल कर आ रहे हों और मुझे चुनौती दे रहे हों। यानी कि जो खाली कैनवास है वो मुझे बेचैन कर देता है कि मैं उसे रंगूं। यानी कि वो पेंटर पिकासो दुनिया के महान चित्रकारों में से एक है स्पेन। तो वो सांड का उन्होंने उदाहरण वहां से लिया क्योंकि सांडों की लड़ाई वहां का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि 2014 से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नियंत्रण, इस पर मतलब बैन कर दिया है। और बैन करने का कारण यह है कि जो खासकर एनिमल की चिंता करने वाले जो एनजीओज हैं उन्होंने इस बुल फाइटिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी। और उसमें उनका कहना था कि ये जो जानवर हैं उनको चोट पहुंचती है, जानवर की कुछ मृत्यु भी हो जाती है, लोगों को भी चोट पहुंचती है जो इस खेल में भाग लेते हैं, तो ये एक तरह से हिंसात्मक खेल है और इसे रोका जाना चाहिए। तो उसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस खेल पर रोक लगा दी है। और लगातार तमिलनाडु से इस बात का दबाव पड़ रहा है केंद्र सरकार पर कि वो इसके लिए अध्यादेश जारी कर दे, मतलब ऑर्डिनेंस जारी कर दे ताकि ये खेल शुरू हो सके। और चूंकि अभी संक्रांति के समय में यह खेल होता है तो सुप्रीम कोर्ट से भी यह रिक्वेस्ट किया गया था कि इसके बारे में आप जल्दी से सुनवाई करके अपना फैसला दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, अब इसके दो पक्ष हैं। देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिहाज से मैं अब आपको बता रहा हूं, इसके 2-3 पक्ष हैं। पहला पक्ष तो प्योरली जुडिशरी का है, लॉ का है, कानून का है कि कानून क्या कहता है। पहला, विशुद्ध कानून। दूसरा, कानून और परंपरा का है, क्योंकि जो जल्लीकट्टू है वहां की एक ट्रेडिशन है, वहां की एक परंपरा है। यह दूसरा पक्ष है कि परंपरा और कानून में जब इस तरह की बात आएगी तब कौन जीतेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी जबरदस्त रूप से इसकी डिमांड हो रही है। वहां एक आंदोलन की स्थिति खड़ी हो गई है, लोग इकट्ठे होकर के इसके पक्ष में मांग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। तीसरा इसका जो पक्ष है वो देखिए कि एक तरफ जुडिशरी है और दूसरी तरफ सरकार है, प्रशासन है, और डेमोक्रेटिक सरकार है। सरकार भी जो है वो डेमोक्रेटिक सरकार है। आप देखिए कि जनता के दबाव के कारण जो आपके सिलेबस में है भी प्रेशर ग्रुप, जनरल स्टडीज मेंस के सेकेंड पेपर में बकायदे मेंशन किया हुआ है प्रेशर ग्रुप। तो किस तरीके से अनजाने में एक प्रेशर ग्रुप बन गया, पूरे के पूरे तमिलनाडु में जनता इकट्ठी हो गई और अब वह प्रेशर डाल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी प्रेशर। जनता किस पर प्रेशर डाल रही है? जनता स्टेट गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रही है कि आप हमें इसकी अनुमति दिलाइए। और उस प्रेशर का नतीजा यह हो रहा है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल लीडर है, राइट। अब आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर का जवाब देखिए, मतलब यहां आपको डेमोक्रेसी को समझना होगा, है ना। प्राइम मिनिस्टर भी ये एश्योर कर ही नहीं सकते कि वो ऑर्डिनेंस जारी करें, और देखिए चीफ मिनिस्टर भी जान रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर, मतलब राष्ट्रपति करेंगे लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, क्योंकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी वही जवाब दे दिया कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तो हो सकता है कि वो उस पर सोचते भी, क्योंकि केंद्र सरकार एक बार ऐसा कर भी चुकी है, तो सोचते भी। तो सवाल ही नहीं है कि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो उसके अगेंस्ट में ऑर्डिनेंस जारी किया जा सके। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी किसके सपोर्ट में है? पब्लिक के सपोर्ट में है। ये प्रेशर ग्रुप है दोस्तों, दिस इज अ डेमोक्रेसी। इसे हम सही मायने में लोकतंत्र कहते हैं कि जनता की इच्छा का आसानी से निरादर नहीं किया जा सकता, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। और फिर दूसरे लोगों को देखिए, जो वहां की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी हिम्मत किसी में नहीं है कि वो इसका विरोध कर सके। हो सकता है कि कुछ लोग ये चाहते हो कि यार ये बंद ही हो जाए, लेकिन ओपनली वो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहां भी आपको जनता का प्रेशर दिखाई दे रहा है। वैसे दोस्तों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो अपनी जन आकांक्षाओं के विरुद्ध जाकर के कितने दिन तक जीवित रह सकती है? नहीं अस्तित्व रह सकता। और अगर पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व नहीं रह सकता तो बट नेचुरल है कि उस पर आधारित गवर्नमेंट का भी अस्तित्व नहीं रह सकता, आपको जन आकांक्षाओं का सम्मान करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आपको पॉलिटिक्स वर्सेस जुडिशरी दिखाई दे रही है, राइट दोस्तों। अब तीसरा, इसके हम व्यवहारिक पक्ष पर आते हैं। इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एडिटोरियल भी लिखा है कि ये जो परंपरा है वो आई कहां से है। तो उसने ये लिखा है दोस्तों कि जो जल्लीकट्टू की परंपरा आई, तो क्या है कि इसमें सांडों को लड़ाते हैं और इसमें जो बड़े जो विजेता सांड बनते हैं तो उनको फिर वो जो उनके यहां जो दूसरे जो पशु मतलब जो गाय होते हैं उनके प्रजनन के लिए वो रखे जाते हैं सांड। तो उससे जो आने वाली जो पीढ़ी है जो ब्रीड है वो बहुत अच्छी प्रजाति के बच्चे होते हैं। चूंकि पहली हमारी जो व्यवस्था थी कृषि व्यवस्था पूरी तरह से बैलों पर आधारित, खेतों की जुताई बैलों के जरिए माध्यम से ही होती थी, तो वो पशुओं में एक बहुत ही मजबूत पशु हो शक्तिशाली पशु हो उसके लिए ये सिस्टम काम करता था। अब ठीक है, अब तो मैकेनाइज हो गई, चीजें थोड़ी सी बदल चुकी हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी एक उठाया है, मतलब एक प्रश्न उठाया है कि यदि जल्लीकट्टू को बंद कर दिया जाएगा तो मैकेनाइज्ड तो हो गया है सब कुछ, इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर तो मैकेनाइज्ड हो गया है, तो फिर लोग अपने घर में पशु पालन क्यों करेंगे? वो तो फिर केवल एक तरह से मांसाहारी के काम आएंगे, बस वही उनकी उपयोगिता रह जाएगी। तो इसका जो एक इकोनॉमी बेस्ड है, जो इसका एक अर्थव्यवस्था का जो आधार है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसको केवल एक संकीर्ण कानूनन तरीके से ही नहीं सोचा जाना चाहिए इस पर, इसको लेकर के उन्होंने एडिटोरियल कमेंट लिखा है किया है, और मैं एडिटोरियल कमेंट आपको ये प्रोवाइड भी कर रहा हूं। तो अब आप देखिए कि दोस्तों की घटना एक है जल्लीकट्टू को, और सिविल सर्विस में इसके कितने एंगल्स तैयारी करने के निकल गए, और इस पर आपको अपनी अप्रोच बनानी है। अगर आपने जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल जो कल से शुरू हो गया है उसमें एक वासुदेव जग्गी जी का स्टेटमेंट आज अखबारों में छपा है, और मैंने उनको प्रत्यक्ष रूप से भी सुना है और मैं उनका बहुत प्रशंसक हूं। वैचारिक स्तर पर उनमें बड़ी नवीनता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बोलते हैं, मैंने प्रत्यक्ष रूप से उनको सुना है। उन्होंने भी देखिए जल्लीकट्टू पर एक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अब क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में भी ये होता है कि कभी सिर में चोट लगी और खिलाड़ी की डेथ हो गई, तो उन्होंने तो कहा क्या इसी आधार पर आप क्रिकेट मैच को बंद कर देंगे, क्योंकि जल्लीकट्टू वहां का एक खेल है। तो उन्होंने इस आधार पर डिमांड ही की है कि नहीं, ये परंपरा जारी रहनी चाहिए। तो इस तरह से पॉइंट्स आपके दिमाग में जब आप अखबार पढ़ते रहते हैं न्यूज सुनते रहते हैं तो इकट्ठे होते रहते हैं, और जब सिविल सर्विस में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे लिखकर आ जाते हैं। मित्रों, अब ये जो दूसरा जो टॉपिक है वो है सीबीआई को लेकर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको मालूम है कि यह लगातार चर्चा में रहने वाला संगठन है जो सरकार जो जांच होते हैं, अपराधों की जांच करने में जो बहुत बड़ी इसकी भूमिका है, और सुप्रीम कोर्ट ने शायद एक डेढ़ दो साल पहले इसे पिंजड़े में बंद तोता कहा था, पिंजड़े में बंद तोता। उनके कहने का मतलब यह था कि ये जो सीबीआई है बेसिकली सरकार का माउथपीस है, जो सरकार चाहती है वही करती है, इसकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है। न्यूज में आपने सुना मित्रों कि एक तो स्वतंत्रता के लिए क्या व्यवस्था की गई है, नियुक्ति को लेकर के व्यवस्था है। देखा आपने न्यूज में, आपने सुना कि इनकी जो नियुक्ति की गई है वो प्रधानमंत्री ने नियुक्ति की है, लेकिन जो ग्रुप था जो डिसाइड किया जिसने नाम, उसमें तीन लोग थे, एक तो प्रधानमंत्री, दूसरे आपने देखा कि विपक्ष के नेता, और तीसरे जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज। तीन लोगों ने मिलकर के एक मतलब समिति बनी और उन्होंने फिर ये नाम डिसाइड किया, तो इससे थोड़ी सी नियुक्ति पर तो कम से कम कह लीजिए कि एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, एक तरफा नहीं है। लेकिन इसकी जो बाद की पूरी कार्यप्रणाली है उसमें ये सवाल उठता है कि फिर सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में सीबीआई रहता है। कार्यकाल भी चलिए एक तरह से इंश्योर कर दिया आपने कि दो साल का कार्यकाल, ये तो आप देखेंगे कि ज्यादातर पदों पर कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो संवैधानिक की बात अलग है, उन पदों की बात अलग है, लेकिन सीबीआई है और दूसरे ऐसे में तो दो साल का कार्यकाल निश्चित है, तो चलिए ये तो श्योर है कम से कम कि दो साल से पहले आप उनको नहीं हटाएंगे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसमें उन्होंने दिया है कि इसको अकाउंटेबल बनाने के लिए दूसरे और कदम उठाए जाने चाहिए। उसमें आज मैं आपको इससे रिलेटेड इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं ताकि ये जो सीबीआई है ये इसे राजनीतिक संरक्षण न मिल पाए। तो इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी बात जो कही है, मुझे भी अच्छी लगी, कि सीबीआई को ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, संसद की जो समिति होती है जिसमें सभी पार्टियों के मेंबर्स होते हैं, उनके प्रति भी अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब दूसरी पार्टी के लोग होंगे वो फिर सही तरीके से निर्णय ले सकेंगे, अगर किसी मामले पर पूछताछ करना हुआ तो वही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। जैसे आप देखिए कि अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर को संसदीय समिति ने बुलाया, वित्त मंत्रालय की संसदीय समिति ने, तो उसमें सभी पार्टियों के लोग हैं, उसमें केवल सत्ताधारी पार्टी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो उससे चीजें ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह से इसको मल्टी जो संस्थाएं होती हैं मल्टीपल लाइंस पर इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रति भी ये अकाउंटेबल हो, इसी तरह से ये संसद की पार्लियामेंट की कमेटी के प्रति भी अकाउंटेबल हो, सरकार के प्रति तो हो ही, तो इस तरीके से होगा क्या कि फिर वो बैलेंस बना करके चलेगा और उसको भी कुछ करने में लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उल्टा पड़ जाए और फिर मैं उसके सामने क्या कहूंगा, इसके सामने क्या कहूंगा। देखिए राष्ट्रहित में तो यही होगा और फिर जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। चूंकि सीबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसीलिए सिविल सर्विस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। मित्रों अब जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं क्लिपिंग्स तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, इसमें दो क्लिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन क्लिपिंग्स, एक तो बिजनेस स्टैंडर्ड का चीन के साथ हमारे जो संबंध है उसको लेकर के है, एक दैनिक भास्कर का चुनाव आयोग ने कुछ दलों में सुधार के लिए, खासकर चुनाव में सुधार के लिए कुछ सरकार से रिकमेंड किया है वो है, उसको आप जरूर देखेंगे, और एक जनसत्ता का है कि किस तरह से दो आईपीएस ऑफिसर्स को सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया है, मतलब बर्खास्त निकाल ही दिया गया है उसको लेकर के, क्योंकि सिविल सर्विस भी आपके सिलेबस में है, तो आप उन्हें देख लीजिएगा दोस्तों, उस पर अब डिस्कस करने का वक्त नहीं रह गया है। तो मित्रों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर ईमेल पर, तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अभिषेक गुप्ता, आशीष श्रीवास्तव, प्रियंका शर्मा राजस्थान से, विवेक कुमार बिल्लोरे, शुभम टोपनावर, साक्षी शर्मा आईआईटी खड़गपुर से, शिखर लखनऊ उत्तर प्रदेश से, विशाल चरक, सुनील कुमार ओजवाल सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, अंकुर निगम पुणे महाराष्ट्र से, जिम्मी जोआन, शुभम शर्मा और धीरज ग्रोवर, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं दो दिन के आपकी ये जो बीच की छुट्टियां होंगी इनके लिए अपनी पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये दो दिन आपके बड़े सुखद हों और ऊर्जा से आप ऊर्जा और उत्साह से भर देने वाले भी सिद्ध हों। तो मित्रों इसी के साथ ही अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।